आदरणीय मोहिनी दीदी जी आ चुके हैं, जो भी भाई बहने बाहर हैं, आपसे नम्र अनुरोध है आप हॉल में अपना स्थान जल्दी से जल्दी ग्रहण करें और आप सभी योग युक्त होके बैठें। जो भी बैठे हैं पीछे बिल्कुल आवाजें आ रही हैं तो साइलेंस में बैठने का अभ्यास करेंगे, जल्दी से अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे।
शांति। तो इसी साइलेंस में रहते जो बाहर भाई बहने बैठे हैं, कृपया करके सामने नीचे बैठ सकते हैं। बाहर टेंट में जो बैठे हैं भाई बहने, सुनाई दे रहा है ना आप सबको, तो आप सब आ जाइए, दीदी के सम्मुख रहते उनसे दृष्टि ले सकते हैं, साइलेंस से आ सकते हैं। और यहाँ पर जो हॉल में बच्चे और यंग भाई बहने बैठे हैं, जो नीचे बैठ सकते वो आकर के बैठ जाएं, ये सहयोग अवश्य देना प्लीज। जो यंग भाई बहने हैं नीचे बैठ सकते बैठ जाइए प्लीज, और बाहर जो भी टेंट के नीचे बैठे हैं आ जाइए, अंदर आइए, दीदी के सम्मुख दृष्टि और शक्ति ले सकते जल्दी जल्दी। बैठ जाएंगे शांति। हम सबको इस घड़ी का इंतजार था जो ऐसे महान तपस्वी, महान पवित्र आत्मा उनसे मिलन मनाए और शक्ति ले, दृष्टि ले, तो वो घड़ी आ चुकी है जो हमारे आदरणीय मोहिनी दीदी जी हम सबके समक्ष हैं। तो उनका हम बहुत तहे दिल से, स्पार्क की ओर से, स्पार्कलर्स की ओर से हम स्वागत अभिनंदन भी कहते हैं और दिल से बहुत धन्यवाद देते हैं जो दीदी जी समय निकाल करके हम सब से मिलने आए और शेयर भी करेंगे। तो हम निवेदन करते हैं आदरणीय अंबिका दीदी जी और अलका दीदी जी से, दीदी जी का स्वागत करें बैज, तिलक और फूल से। साथ साथ हमारे भूमिका बहन जो दीदी जी के संग अंग संग रहते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू दीदी जी। सो हम सब जानते हैं कि ऐसे दुनिया में लीडर्स, चंद लीडर्स होते हैं जिनके तपस्या, त्याग से उनके महानता उनके चेहरे से दिखता है। ऐसे हमारे मोनी दीदी जी हैं जो ब्रह्मा कुमारी इसके एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। दीदी जी रीजनल कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा कुमारी नॉर्थ और साउथ अमेरिका और कैरिबियन के हैं। भारत में ही उनका जन्म हुआ, तो डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस और जर्नलिज्म। दीदी जी बहुत ऐसे एनजीओस में सेवा किए हैं और बहुत प्रमुख बात हम सब आज गर्व करते हैं कि ऐसे देश, अमेरिका जैसे देश में बहुत सुंदर ही पीस विलेज दीदी जी के नेतृत्व में, गाइडेंस में बना। बाबा के और दादियों की बहुत ही उसमें योगदान और संकल्प दृढ़ रहा। तो दीदी जी जो वहाँ रहते और मधुबन में भी रहते, बैलेंस करके अपनी सेवाएं दे रहे, अपनी समय दे करके आज हम सब के समय दे करके इस बीच में उपस्थित हैं। फिर से दीदी जी का बहुत बहुत थैंक्स देते हैं। और बहुत सुंदर हम गर्व के विषय बताना चाहते कि स्टोरी ऑफ इमोर्टैलिटी जो दीदी जी ने किताब लिखी उसका बहुत सुंदर प्रिंट और ऑडियो भी ऑडिबल है। तो जैसे बाबा कहते, मम्मा और बाबा के अंग संग रहते, दीदी जी बाबा और मम्मा के गाइडेंस में बहुत जगह, अमेरिका ही नहीं बहुत जगह विदेश में सेवाएं दी है। तो दीदी जी के हम अनुभव भी सुने हैं, जैसे हम सब जानते अव्यक्त परिवार में उनका अनुभव और बहुत गहन विचार भी आते हैं। तो हमने सुना कि मम्मा बाबा के अंग संग रहते, जैसे मम्मा की दिनचर्या थी वैसे दीदी जी भी दिनचर्या फॉलो किए। बाबा के गाइडेंस से, बाबा के इससे ही मार्गदर्शन से ही दीदी जी हर कदम रखते हुए आज देश विदेश में इतनी सब सेवाएं दे करके दीदी जी महान त्यागी और तपस्वी के रूप में उपस्थित हैं। मनन चिंतन करते हुए हमने देखा कि जो अव्यक्त इशारे आते हैं दीदी जी उसका इतना गहन रीति से हम सबको विचार प्रस्तुत करते हैं और दूर बैठे भी हम अनुभव कर सकते हैं आज के अव्यक्त इशारे आज के जो है। तो ऐसे दीदी जी वाइब्रेशंस द्वारा, तो अपनी बातों द्वारा, दृष्टि द्वारा इतनी शक्ति देते हैं, इतनी अव्यक्त स्थिति से हम सबको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे दीदी जी का फिर से हम तहे दिल से हम अभिनंदन करते हैं, फिर से थैंक्स देते हुए। आज का जो सुंदर विषय है बीइंग स्मृति स्वरूप, तो स्मृति स्वरूप हम कैसे रहें इसका गहन और विचार जो है दीदी जी हम सब के सामने शेयर करेंगे। आदरणीय मोहिनी दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी ठीक हैं? ठीक हो सभी? राजी हो, मौज में हो? हमारे यहाँ पूछते हैं ना, खुश राजी मौज है। तो खुशी कहाँ से आती है? जब राजी होते हैं। राजी का मतलब संतुष्ट रहें, और संतुष्ट होते हैं तो मौज में हैं, तो खुशी, राजी और मौज। फिर हम पूछते हैं भाई सभी आनंद में हो? आनंद में हो सभी कि सिर्फ ओके हो? कहते हैं ओके। मैं पूछती हूँ आनंद में हो कि सिर्फ ओके हो? अच्छा आनंद, आनंद की क्या परिभाषा है? सुख, शांति, आनंद, आनंद में क्या फर्क है? सुख और शांति, आनंद। आनंद है दुख सुख से न्यारे। बाबा कहता है ना, न्यारे प्यारे बनो। कई दृश्य आते हैं, दुख हो सकता है। आजकल तो कितने ही फोन, टेलीफोन, ये बीमार है, इसका एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ पर ये समस्या है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम, सुनते ही रहते हैं। तो मैं तो जब कोई भी बात सुनती हूँ तो बाबा को साथ रख के, बाबा आपका बच्चा ये कह रहा है, कर्मों का हिसाब किताब है, तो बाबा ही मदद करेगा ना चुप तो करने में। तो मैं सुनती हूँ, सुनना जरूरी है और फिर सकाश भी देना है, लेकिन बाबा के साथ सुनने से वो दुख नहीं होता। फिर सुख होता है, भाई ये बहुत अच्छा हो गया, स्टूडेंट हूँ,
सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो।
after. तो आनंद की परिभाषा है दुख सुख से न्यारे। ये बड़े बड़े महात्मा हैं, सबके लास्ट वर्ड आनंद होता है ना, परमानंद, सबका आनंद, मतलब कि वो संसारिक रूप से दुख सुख से ऊपर है, इसलिए उनको आनंद की टाइटल देते हैं। तो हम बाबा के बच्चे भी ड्रामा के सीन कहो, कर्मों की फिलॉसफी कहो, इस रूहानी यात्रा में कई तरह की पढ़ाई है तो परीक्षा तो होती है, बिना परीक्षा के तो प्रमोशन होती नहीं। और परिस्थिति है ही परिस्थिति है, तो हमारी स्थिति पर क्यों असर आना चाहिए। जब नाव चल रही है उसमें पानी आने लगे थोड़ा, तो क्या संभावना है, थोड़ा भी पानी आने लगे तो पता होता है कि अब बढ़ता जाएगा तो नाव डूब जाएगी। तो वो बाहर से जो छेद है वो संशय का है, संशय होता है तो संग भी वैसा मिलता है, उसको भी संशय वाला ही होगा, तो नाव भारी हो जाती है, फिर हिलती है। तो बाबा कहते हैं ना, अचल, अडोल और एक रस, वो स्थिति नहीं रहती है। अचल भी होते हैं, चलायमान भी होते हैं, डोलते भी हैं, और एक रस स्थिति भी नहीं रहती है। तो आज का विषय शुरू होने से पहले मुझे अभी भी रमेश भाई के शब्द याद आते हैं, जब पहले पहले शुरू किया था तो हम सबको निमंत्रण आता था, हम लोग ज्यादा डबल विदेशी हैं, मतलब सेवा, कई तरह की सेवाओं में व्यस्त थे। तो मैंने रमेश भाई से कहा कि मुबारक है, शुभकामनाएं हैं, परंतु हम शायद बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, या कोई बात नहीं है। और तब से लेके आज तक, आज हम इसकी सफलता देख रहे हैं कि आप लोग भारतवर्ष के चारों तरफ से भाई बहन यहाँ बहुत संख्या में आए हैं। तो जिन्होंने इस पार्क को आगे बढ़ाया, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, हमारी शुभकामनाएं हैं। और आप सभी भी जो आए हैं उनके प्रति भी हमारी शुभकामनाएं, शुभभावना है कि आपने जो लक्ष्य लिया है स्वोन्नति का और विश्व सेवा का, उसमें आपको सफलता मिलती रहे। थोड़ा सा न्यूज सुन रही थी, मैंने कहा क्या हो रहा है, और आप लोगों की जो बुकलेट्स बनती हैं बहुत अच्छी होती हैं, जब मौका मिलता है तो पढ़ते रहते हैं, बहुत अच्छी बातें होती हैं हर टॉपिक पर। स्मृति से शुरू करते हैं, समर्थी आती है और स्वरूप बनते जाते हैं, ये एक यात्रा है। स्मृति की सामर्थ्य और सामर्थ्य से स्वरूप। बाबा की सारी मुरली या ज्ञान जो है वो सिर्फ हमारे को हमारी स्मृति है, चाहे वो सुदर्शन चक्रधारी हैं, चाहे हम भविष्य में देवता बनने वाले हैं, कोई भी एक एक शब्द आप देखेंगे तो वो हमारी स्मृति को याद रहे, ज्ञान की स्मृति हो, याद है वो स्मृति है, समय समय पर दिन भर में अपनी धारणाओं पर अटेंशन हो। और ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं उसके आधार पर बाबा हमें सेवा के निमित्त बनाते हैं। मुझे ये सेवा करनी है, मेरी ये आइडिया है, मेरा ये प्लान है, वो तो होता ही है, लेकिन जो शक्ति है सेवा में, बाबा ने मुझे इस सेवा के निमित्त बनाया है, तो उसकी जो पावर होती है ना अंदर में, जो सब कुछ करते हुए न्यारे प्यारे रह सकते हैं, उसमें निमित्त भाव बहुत सूक्ष्म है। निमित्त भाव में निश्चिंत भी रहते हैं और सबको ऐसा फील होता है कि बाबा ने इनको निमित्त बनाया है, अपना सम्मान भी रहता है और सबका स्नेह और सम्मान भी प्राप्त होता है। तो ज्ञान को स्मृति के रूप धारण करना, आजकल सभी व्यस्त हैं, आज बहुत याद नहीं कर सके क्योंकि व्यस्त थे। किसके कार्य में व्यस्त हैं, किसका कार्य है ये बताइए, बाबा का है, बोलो सभी, सबको याद रहता है, बस वही से मिलती है ना, क्या मुझे ये याद रहता है कर्म योग करते समय कि बाबा का कार्य है। तो जब बाबा का कार्य है तो बाबा को कैसे भूलेंगे आप, बाबा के कार्य की स्मृति में ही कार्य में सफलता है। करण करावन हार करा रहा है, बाबा का कार्य है। आज जो भी कार्य, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, आजकल थोड़ा समय पहले महात्माओं का यहाँ पर एक संगठन था, तो कार्य इतना विशाल है और आप सभी करने वाले इतने एक्सपर्ट हैं, कहें अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ है, तो वो जब सोलार में गए कुछ महात्मा लोग, सबको ले जाते हैं ना आजकल, तो उनको बोला ये तो बहुत अच्छा बना है, ये तो बहुत ह्यूज, मतलब बड़ा है, ये तो विशाल है, कैसे करते हो आप लोग बाबा का कार्य। फिर वो लोग भंडारे में गए तो सब मशीनें थी, तो हमने भी देखा कि एक मशीन से दूध निकलता है, राइट, तो यहाँ पर दूध का बहुत है, हम लोग विदेश में दूध का अब और ही कम है, बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा चाय में ले लो, यहाँ पर तो गुलाब जामुन खाओ, खीर खाओ, बर्फी खाओ, दूध का बहुत कंजप्शन है। तो वो सभी अपना ग्लास नीचे रखते हैं, दूध काफ़ी तेज़ देखा है आपने, उससे नलके से निकलता है, यू नो, तो पहले तो मैंने सोचा ये रुकता कब होगा, क्योंकि ग्लास तो भर गया, तो उन्होंने बोला एक कप के बाद रुक जाती है मशीन, कही तो अच्छा है। तो वो लोग कहने लगे ये कैसे चलाते हो, 22,000 खाना खाते हैं, इतना अनाज बाबा कर रहे हैं। जहां भी वो गए करने वालों ने एक शब्द का कि बाबा करा रहे हैं, उनके मन में और ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लग गई, भाई वो बाबा कौन है जो सब कराता है, तो बोला कहाँ रहता है वो बाबा, कहाँ है? क्या बाबा तो ऊपर रहता है, फिर यहाँ कैसे करता है? फिर बाबा कहा तो फिर दादा भी आ जाता है, ब्रह्मा बाबा का भी परिचय, बाप दादा का परिचय मिल जाता है। फिर तो उनके मन से भी जहाँ भी जाए, अरे ये तो बाबा का काम है। तो अपने मुंह से अगर स्मृति है तो वृत्ति तो है ही, भावनाएं तो है ही, वृत्ति को भावना ही कहेंगे। पर उसकी जो समर्थ्य के दो अर्थ होते हैं, एक पावर एक कैपेसिटी। ये बाबा ने 18 जनवरी को पहली बार हमने सुना था, स्मृति की सामर्थ्य। जगदीश भाई हमेशा कहते थे जिसका अच्छा योग है उसकी योग्यताएं बढ़ती जाती हैं। अगर आपकी योग्यताएं नहीं बढ़ रही हैं तो योग में कुछ कमी है। तो बाबा का कार्य है और हम ये कहें कि बाबा की याद नहीं है तो कहीं कुछ ठीक नहीं है। याद की यात्रा कहो, योग अग्नि कहें, तो वो यात्रा में आपकी स्पीड अच्छी नहीं है। बाबा का कार्य है, हमें बाबा ने निमित्त बनाए हैं, उससे आपकी कैपेसिटी, आपकी योग्यताएं, विशेष होंगी, विशाल होंगी। और देखिए क्रेडिट तो सबको, जो जो करता है उसका, बाबा कई कहते हैं, कई कहते हैं हमें तो कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ नहीं है, पर बाबा ने कहा प्राप्ति तो होगी ना हर श्रेष्ठ कर्म की, जो कुछ सेवा करते हैं प्राप्ति तो है उसकी। तो एक बार कोई बात चल रही थी, बैठे थे हम दादी जानकी के साथ, कुछ हम आरसी सीनियर बहने बैठी थी, दादी ने दो बहुत अच्छी बातें बताई। अगर आपकी स्मृति में किसी का भी अवगुण, कोई पास्ट की बात, कुछ भी अगर आपकी स्मृति में आपने अंदर रखा हुआ है तो आपका ट्रैक बंद है, करंट नहीं ले सकते आप। वो बात हमें इतनी ध्यान पर है कि जो बात हो गई हो गई, जिसके बारे में हो गई हो गई, अपने मन में न भावनाएं चेंज करो। ये बाबा कहता है शुभ भावना शुभ कामना। तो अपना स्मृति को इंग्लिश में हम लोग मेमोरी ट्रैक बोलते हैं, ट्रैक है ये, मेमोरी ट्रैक है। उसमें अगर कोई बात जो भूल जानी चाहिए नहीं भूलिए, आप देखिए जरा अपना अभी एक मिनट में चार्ट देखो, क्या मुझे किसी के प्रति किसी समय की कोई घटना या व्यवहार या कमी कमजोरी याद है, मुझे स्मृति में है मेरे? अगर थोड़ी भी है तो एक मिनट आप हम सभी साइलेंस में बैठ के थोड़ा क्लीन कर दो उसको, है पॉसिबल? करेंगे एक मिनट के लिए बैठते हैं, थोड़ी सफाई कर दो, स्मृति ट्रैक जो है उसको क्लीन कर दो। ऐसे भी अभी होली हो गई ना, तो बाबा ने कहा था होली का मतलब होली ना, पास्ट इज पास्ट। दादी गुलजार कहती थी जो बात है वो आपसे भी समझदार है। कैसे? बात होती है चली जाती है लेकिन आप नहीं भूलते, वो तो चली गई, जो उसको लेकिन आप लोग भूलते नहीं हो। तो ये जो जैसे हमारी दीदी मनमोहिनी कहती थी कि जोड़ना आसान है या तोड़ना, अगर तोड़ोगे नहीं तो जोड़ोगे कैसे। जिस पर सुनाते हैं ना कि एक नाव है, सारी रात नाव चलाने वाला चलाता रहा, रात का टाइम था, सवेरे आंखें खोली तो नाव वहीं की वहीं खड़ी थी। क्या कारण था? लंगर नहीं उठा था। ऐसे ही स्मृति से स्वरूप बनने के लिए पहले तो अपनी स्मृति को क्लीन करना पड़ेगा। ट्रैक है ये, बाबा से शक्ति मिलेगी, बाबा की से करंट मिलेगी, पर वो करंट ब्लॉक हो जाती है। अगर बीच में कुछ है, वो एक विघ्न है, बाहर के विघ्नों का कनेक्शन अंदर के विघ्न से है। हमारे पास एक बहुत बड़ा रिट्रीट प्लेस किसी देश में है, तो थकावट तो होती है ना, कभी ज्यादा देर से सोते हैं, ज्यादा लोग आ गए, ज्यादा खाना बना, थोड़ा अंदर में हलचल, इट्स टू मच, ये तो बहुत है, ये बहुत है, और भी थोड़ी निराशा की बातें, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, बहुत बड़ा विघ्न। मैं आपको मालूम है हमारे पास भी पीस विलेज है, अपने हमारे हिसाब से बहुत बड़ा है, 300 एकड़ लैंड है और पहाड़ी है, लेक है, 250-300 तक लोग रह पाते हैं। मैं उनको कभी भी कहती हूँ ये मत बोलो, ये नहीं है हमारे पास, ये नहीं हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं। आपका एक एक संकल्प विघ्न बन रहा है, बिल्टअप हो रहा है, होगा, आपका है क्या? तो कई बड़ी बड़ी बातें आती हैं जब बड़ा स्थान होता है, हम लोगों को अनुभव तो होता नहीं है, तो होती हैं कई बातें। तो एक रात को, आधी रात थी, मुझे अचानक किसी बात का, जैसे आज बाबा ने कहा ना कि कंसर्न या फुरना एक ही बात का होना चाहिए, पर मुझे किसी और बात का था। तो बाबा को मैंने देखा, बाबा कहता है कि तुम्हारा काम है क्या? मैंने कहा नहीं, ये तो आपका है, आप ही करेंगे, तो फिर उसकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो? वो दिन है और आज बाबा मेरे से बात कर रहे हैं। बाबा का काम है तो बाबा को याद करो ना। नहीं, ये कहावत भी है ना कि प्रभु चिंतन करो, चिंता मत करो, चिता चिंता चिता के बराबर है, और चिंतन आपको स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। तो स्मृति बाबा का कार्य है, और विघ्न अगर आते हैं स्मृति में, किसी भी प्रकार का कोई व्यर्थ चिंतन चलता है। चिंतन तो देखो मन है, चलेगा, पर व्यर्थ चिंतन, संकल्पों को तो आप बंद नहीं कर सकते, पर व्यर्थ को तो बंद कर सकते। तो इस तरह से स्मृति की सामर्थ्य बढ़ती जाएगी। कभी भी जो हम असंतुष्ट होके बोलते हैं ना, वो भी आपके रिकॉर्ड में आता है। हम कभी भी यज्ञ के बारे में, कोई बारे में कुछ वर्णन नहीं करते, सब कुछ सुनते भी हैं, मालूम भी पड़ता है। अभी तो थोड़ा अपनी जिम्मेवारी समझ के भी सुनते हैं, ध्यान देते हैं। बाबा का कार्य है ना, बाबा ठीक करेगा। हम क्या कर सकते हैं, बाबा को याद करो। नहीं, आज बाबा ने कहा एक ही फोड़ना है, वो है याद का। बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा बाबा ने, कि बहुत बच्चे हैं तो फोड़ना, तो फोड़ना मतलब कंसर्न तो होते आए हैं बाबा, बच्चे ठीक रहे। उन दिनों में तो देखो, आज तो सब कुछ विशाल है, भंडारी है, बाबा का भंडारा है, बाबा कितने बच्चे हैं। उन दिनों में तो बहुत लिमिटेड था सब कुछ में। आपको मालूम है यज्ञ में बैगरी पार्ट भी चला। एक दिन ऐसा था कि आटा चावल भी नहीं थे। आज तो एक टाइम अगर शायद शाम को चाय के साथ नाश्ता ना मिले तो भी शोर मच जाए। आज क्या हुआ, मिला नहीं कुछ भी। तीन टाइम भोजन, दो टाइम चाय पानी। सब कुछ हो रहा है, कोई फोड़ने की बात, पर बाबा की याद और बाबा का कार्य, उस स्मृति की सामर्थ्य, उसका स्वरूप फिर क्या है, एक रस स्थिति। जो अचल कहते हैं ना, अचल का मतलब कि जो इमोशनली चलायमान हो जाते हैं, अरे ये क्यों हो रहा है, देखो ये हो रहा है, देखो ये हो रहा है, ये चलायमान मन को चला रहा है, अननेसेसरी। हमें मालूम है रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए, पर उसका तरीका अपनाएंगे या वर्णन करेंगे बैठ के। मैं सबको कहती हूँ, क्या कोई भी आके कहता है तो क्या रामायण और भागवत अभी तक पढ़नी है क्या? रामायण क्या था, ईर्ष्या। भागवत क्या था, पावर स्ट्रगल, किसको राज्य मिले, कितना मिले, किसका है। हमने तो बहुत पढ़ लिया है ना अभी तो कहानी करना, मान अपमान के ही चक्कर में रहना, ये सब रामायण भागवत है ना। हमें तो गीता पढ़नी है। आज भी बाबा ने कहा ना, श्रीमद पढ़ चलो, श्रीमद भागवत गीता, ज्ञान के आधार पर निर्णय शक्ति बढ़ाओ। तो स्मृति से जो समर्थी बनती जाए, शक्तियां बढ़ती जाए, तो एक शब्द बीच में आता है, स्मृति की समर्थी, उसकी समर्थी, द अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स फ्रॉम दोज कैपेसिटीज, वो आपके स्वरूप से दिखाई देंगे। स्मृति की यात्रा से स्वरूप तक हमें पहुंचना है, तो रोज आपकी स्मृति प्योर होती जाए, पावरफुल होती जाए। कल हमारे पास ग्लोबल हॉस्पिटल के एक दो डॉक्टर ऐसे ही बैठे थे, बहुत समय के बाद ये प्रश्न चला कि बीज रूप स्थिति क्या होती है। अभी बीज को आप देखो, उसमें क्या दिखाई पड़ता है, ये अमरूद है, ये आम है, ये पपीता है, कुछ नहीं दिखता, राइट? पपीते का बीज काला है, उसको बो देते हैं, तो अगर हम अपनी मन बुद्धि और संस्कार को संभालें, संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और उनको चलाने वाले संस्कार, अगर उसको संभालें तो बीज रूप स्थिति है। तो फिर आज मेरे को एक्सपेरिमेंट किया, फिर फोन किया, कि अशरीरी अवस्था तो अनुभव होती है पर बीज रूप नहीं हुई। तो मैंने कहा आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति, बीज रूप स्थिति है तो एक ही, लेकिन सब समा लो, बीज में सब समाया हुआ होता है, दिखाई नहीं पड़ता है, राइट। पर जब उसको बोते हैं तो अंकुर निकलता है, फिर थोड़ा पेड़ निकलता है, फिर फल निकलता है, उसी फल में फिर बीज भी होता है। तो स्मृति को रोज देखो, जैसे इन्होंने बताया अव्यक्ति परिवार का, ये अपना अव्यक्ति इशारे का मुझे इतना अच्छा लगता है। तो सब कहते हैं आप इसका क्या महत्व, तो मैंने कहा रोज हमें अपनी मन बुद्धि को थोड़ा रिफाइन करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो टूल्स हैं वो मन बुद्धि है। तो कहते हैं एक बार एक लक्कर आ रहा था, पेड़ काटता था, तो उसके मालिक ने बोला भाई कल आपको डबल काटना है। तीसरे दिन भी वो कहता रहा कि थोड़ा और काटो, जल्दी काटो, ज्यादा काटो, तो होता ही नहीं था वो बेचारा जितना कर सकता था। तो तीसरे दिन पूछा गया कि आपका जो कुल्हारा है, कुल्हारा समझते हैं ना जिससे काटते हैं, उसको आप तीखा करते हो, तेज करते हो, डो यू शार्पन, का वो तो नहीं किया, तो कैसे जल्दी कटेगा, ज्यादा कटेगा। तो हमारे मन बुद्धि टूल्स है ना, तो मन और बुद्धि को रोज सवेरे, चाहे अमृत वेला है, चाहे योग है, चाहे फिर उसके बाद बोलनी है, वरदान है, वो सब हमारे रिफाइन करते हैं, हमारे मन रोज करते हैं। नहीं, जब मामा से पूछा गया, मामा आप अभी क्यों मुरली सुनते हो, मामा बेड में थी, माइक ऊपर था और रोज पूरी मुरली सुनती थी, वो बेड पर थी, बोला अभी मैं ये देख रही हूँ कि मैं किस बात की स्वरूप नहीं बनी हूं, मैं सिर्फ ये थोड़ी चेकिंग कर रही हूं कि मैंने किस बात की पूरी धारणा नहीं की है। तो ज्ञान सुनना चाहे अव्यक्त, तो मेरे लिए अव्यक्त इशारा ऐसे है कि जैसे रिफाइन हो रही मन और बुद्धि, हमारा सोचना, हमारा निर्णय करना, उसका इफेक्ट फिर हमारे स्वभाव पर आता है, संस्कारों पर आता है, वो रोज रिफाइन करता है बाबा। जैसे हमारी अवस्था अच्छी रहे, एक रस रहे, प्रफुल्लित रहे, उमंग उत्साह में रहे, उसके लिए बाबा ये सारी दुनिया में, मैं नहीं समझती कोई और ऐसा परिवार या संस्था है जिनको रोज मुरली मिले, रोज उनका लेसन मिले। इतना बाबा प्रयास कर रहे हैं हम सभी के लिए, और हम मुरली सुन के कहते हैं ये पॉइंट तो कल भी थी, ये तो हमने पहले भी सुनी है, ये तो रिपीट हो रहा है, चलो एक झुटका लगा लो, रिपीट ही तो हो रही है। ऐसे ऐसे संकल्प कईयों को आते हैं, वो महत्व नहीं समझते कि क्यों रिपीट होती है। आज मैं किसी को कहूँ ये करो, फिर कल कहूँ परसों नहीं करते तो हम कहते इसको छोड़ दो, नहीं इसको छोड़ दो, ये तो कर ही नहीं रहा। बाबा ने कभी ऐसा किया? अगर किया होता तो आज मुरली नहीं होती, भाई ये तो वेस्ट है। मुरली डिपार्टमेंट से आज भी पूछिए आप, पहले पन्ने छपते थे, अभी इंटरनेट पे होता है, पर एफर्ट तो लगता है ना। नहीं, आप राजू भाई से पूछिए, वही अव्यक्त इशारे, पता नहीं कैसे कैसे पॉइंट्स कहाँ से बोलियों से, अव्यक्त बोलियों से निकालते हैं, तो एफर्ट तो है ना। तो बाबा ने आज तक भी हम बच्चों के लिए शिक्षा की रक्षा, शिक्षक भी है रक्षक भी है, रक्षा कहाँ से चाहिए, माया से। और माया क्या है, एक मन की भ्रांति है, इल्यूजन है, अनुमान कर लेते हैं ऐसा कहा इसने, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ भी नहीं है माया। उसको अच्छा लगता है हमसे खेल पाल करना, हम लोग डर जाते हैं। तो रोज सवेरे अपनी स्मृति को देखो, रात को सोने से पहले बाबा को गुड नाइट भी करते हैं, और हो सक बाबा के सामने बैठो, चाहे आधा घंटा नहीं जितना भी टाइम मिले सब बैठो। मैं तो जो भी सेवाधारी होते हैं ना, या जो भी हम सेंटर पे होते हैं, भाई सभी बैठो, इकट्ठे बैठो, एक गीत चलाओ, दो गीत चलाओ। तो अगर आपको नेक्स्ट मॉर्निंग अमृत वेला, अगर अमृत आपको पान करना है, पहले गांव में होता था पानी, मॉर्निंग में पानी भरते थे पॉट्स घड़ों में, दूध आता था ताज़ा, तो रात को बर्तनों को अच्छी तरह घिस के साफ करके, क्योंकि अगर इतना भी दूध एक दिन पहले का रह गया और फ्रेश दूध डाला तो क्या हो जाता है, पनीर भी नहीं बनता, वो भी फट जाता है दूध, नहीं क्या बोलते हैं, यही कहेंगे ना, इट स्प्लिट हो जाता है। पानी जो है अगर उसमें भी कोई गंदा पानी रह गया और आपने फ्रेश भर दिया तो शुद्ध तो नहीं रहेगा ना। तो अपने मन और बुद्धि रूपी बर्तनों को रात को मांजो अच्छी तरह, तो साफ करो और फिर आप सो, कि जब सवेरे उठेंगे तो इसमें अमृत पान होगा। कल परसों हम दादी गुलजार की एक छोटी सी वीडियो चलाई थी अव्यक्ति परिवार में, तो दादी ने कहा कि जरूरी नहीं है कि सवेरे उठ के विचार सागर मंथन शुरू कर दो, लेकिन आप बैठते हैं और आपको कोई व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो मंथन करो, श्रेष्ठ संकल्प लाओ और जो व्यर्थ संकल्प है उनसे छुटकारा लो, नहीं तो साइलेंस में बैठो, अशरीरी आत्मिक स्थिति में बैठो। तो रात का ये जो उस दिन भी बाबा ने कहा ना, चार्ट रखेंगे तो धर्मराज के सामने नहीं जाना पड़ेगा, वो तो खैर ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान समय पे मन बुद्धि के बर्तन रात को साफ करके उलट दो, क्योंकि उसमें ओपन रहेंगे तो कुछ कूड़ा करकट आ जाएगा, उलट दो, वो उलट देते हैं। याद है आपको, कईयों को याद होगा, ठीक, जो गांव में रहे हैं, या आजकल तो सब कुछ पैकेट में आता है प्लास्टिक में, पहले तो बकायदा तांबे के बर्तन या मिट्टी के, मतलब अच्छे रखते थे ना, अभी तो पैकेट आ जाते हैं गत्ते के, प्लास्टिक, सारा प्लास्टिक की दुनिया है, पैसा भी प्लास्टिक हो गया है, आपका क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक का है ना, सारी करेंसी वर्ल्ड में प्लास्टिक है। तो रात को ये बर्तन साफ करके सोएंगे, सवेरे उठते ही बाबा गुड मॉर्निंग, अमृत पान करो, अमृत वेला है। लेकिन अगर नहीं साफ किए हैं, सवेरे उठते ही संकल्प शुरू हो जाते, जो आपका लेफ्ट ओवर है ना कल का, बाबा कहते हैं याद की यात्रा से सतो प्रधान बनेंगे। तो एक बार हमने बहुत डिस्कस किया कि सतो तो ठीक है पर रजो क्या होता है। तो उसमें गीता में लिखा हुआ है कि जो कुछ बासी होता है ना, बासी मतलब स्टेल होता है, जैसे कल का खाना, कल का ये, उसको रजो कहते हैं। तो कल की बात अगर मुझे याद है तो आपका दिन रजोगुण से शुरू हो रहा है और हमें सतो बनना है, सतो प्रदान बनना है। और हम तो चाहते हैं सत्य को लाना ना। तो ये रात के बर्तन साफ करके जब अमृत मिला, तो कहने का भाव ये है कि जो सवेरे की मुरली चलती है, मुरली चार तरीके से सुनो, पढ़ो उसको, फिर नोट्स बनाओ, फिर रिवाइज करो दिन को कौन सी पॉइंट, ये चार विधियां अपनानी पड़ती हैं। मैं पहले सवेरे अमृत वेले के बाद शॉर्ट में एक टेलीग्राम बनाई है हमने, उसमें हिंदी, इंग्लिश और स्पेनिश मुरली 20 मिनट में, पहले वो सुन लेती हूँ, फिर जहाँ क्लास में चल रही है वो सुनती हूँ, फिर उस थोड़े से नोट्स बनाते हैं कौन सी मुख्य बात थी, कि सारी मुरली तो दिन भर ही याद रहेगी आज बाबा ने क्या कहा, फिर उसका स्लोगन है, फिर अव्यक्त परिवार, ऐसे सवेरे अपनी, जैसे कहते हैं ना, मैं तो लोगों को भी कहती हूँ भाई कुछ सुनते पढ़ते नहीं सवेरे, और सोचते हो कि हम पॉजिटिव सोचे, पर पॉजिटिव आपने कहाँ से आएगा पॉजिटिव, पहले पढ़ो लिखो सुनो तो पॉजिटिव का सोर्स बनेगा, वही तो दिन को याद आएगा। योग हमें करना नहीं, मुरली पढ़नी नहीं, फिर अच्छा ही सोच रहे, अच्छा कहाँ से सोचे। तो हमारा जो सोर्स है वो सवेरे का है, हमारी स्मृति में नेचुरल रहे, एक रस रहे, उसका तरीका है कि आपने दिन कैसे ठीक से शुरू किया, अटेंशन से किया। सिर्फ नियम की बात नहीं है, नियम संयम जरूरी है, परंतु उसके साथ उसको गहराई से समझना। तो आपकी स्मृति, एक बार मामा ने कहा मुरली ऐसे सुनो कि सुनते सुनते मुरली का स्वरूप बन जाओ। तो हमने कहा वो कैसे होगा, मामा से पूछते थे, इतनी अटेंशन से के ज्ञान रतन है, योग से कमाई होती है, योग से कमाई होती है। फिर बाबा एग्जाम्पल देता है कि कमाई करते हैं तो नींद नहीं आती है, आधी रात को भी शिप आता है तो बिजनेसमैन जगा हुआ होता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी निंद्रा पर आपकी जो संयम चाहिए वो नियम में आपको मदद करता है। उठना चाहते हैं ठीक से, अमृत वेला करना चाहते हैं, नींद, बहुत लोग कहते हैं नींद आती है, थकावट होती है, व्यर्थ संकल्प, तो रजोगुण है। कल की बात कल की थी, राइट, आज तो आज है। आप क्या चाहते हैं, जो कल हुआ वही आज हो या नया हो, विशेष हो? कौन चाहते हैं जो कल हुआ वो आज भी हो? एक भी नहीं। तो आज उससे बेटर हो, श्रेष्ठ हो, राइट, तो वो तो हमारे सोच से शुरू होगा ना। तो इस तरह से ये बातें हम इसलिए सुना रहे हैं कि अपनी स्मृति को ऐसा बनाओ जो आप में सर्व शक्ति है, चाहे साइलेंस की शक्ति है, एकाग्रता की शक्ति है, सकाश देना है, कुछ भी करना है, शक्ति बढ़नी चाहिए। आपको महसूस होना चाहिए, पहले मुझे एक बात एक हफ्ता याद रहती थी, अभी दो दिन, फिर एक दिन, अभी तो दो मिनट के बाद भूल जाती है, होती है बात हो गई, पर वो मन में चलती रहे चलती रहती है, उसी को तो हम व्यर्थ कहते हैं ना। तो शक्ति आती जाएंगी और स्वरूप प्रकट होता जाता है। और स्मृति जो है उसकी रिजल्ट आपके स्वरूप से दिखेगी। मैं तो कहती हूँ आजकल ओम शांति ठीक से कहने का भी टाइम नहीं है। पहले हम ओम शांति कहते थे तो एक सेकंड, एक मिनट एक दूसरे को दृष्टि देके ओम शांति मुस्कुरा के कहते थे। आजकल तो चलते ओम शांति ओम शांति, मतलब इतना भी टाइम नहीं है कि एक सेकंड आत्मिक भाव आत्मिक दृष्टि से बोलो ओम शांति, खुशी से बोलो, हर्षित होके बोलो। तो इस तरह से ये जो यात्रा है स्मृति से स्वरूप बनने की, हम लोगों का सारे वर्ल्ड के टीचर्स की जो मीटिंग थी अभी एक दो महीना पहले, उसमें हमारा भी टॉपिक था स्मृति से स्वरूप। तो सर्व शक्तियां भी काम करेंगी और स्थिति भी एक रस, एक रस स्थिति का मतलब सदा स्मृति। एक बार मुझे बहुत आया कि अचल को भी हम समझते हैं इमोशनल, अडोल को समझते हैं बाहर से भाई कोई बात हो गई हिलो नहीं, लेकिन एक रस कैसे बने स्मृति। तो मैंने काफी मुरलियां पढ़ी, तो एक बार बाबा ने कहा कि जब स्मृति सदा रहेगी तो एक रस स्थिति भी रहेगी, स्वरूप भी रहेगा। तो उसके लिए चाहे ड्रामा याद करते हैं, चाहे तीन बिंदु लगाओ, चाहे किसी भी तरह की पॉइंट्स यूज करते हुए अपने मन और बुद्धि को दिव्य बनाते जाओ। नहीं, अभी बाबा ने कहा पवित्रता फिर दिव्यता, तो आपकी पर्सनैलिटी दिव्य होती जाएगी, अलौकिक लौकिक अलौकिक दिव्य। तो वो स्वरूप है ना, स्वरूप धारणा का भी है पर स्वरूप अपने संबंध व्यवहार बोलना देखना सब में दिव्यता। स्मृति का स्वरूप क्या है? दिव्यता। बाबा आजकल दो बातों पर बहुत ध्यान देते हैं, मधुरता, बहुत जल्दी आवेश में आ जाना, थोड़ा भी कड़वापन किसी तरह का होना, मधुरता धैर्यता। जितनी धैर्यता और मधुरता होगी वो स्वरूप है ना। स्वरूप की तो बहुत लक्षण है, वो तो फिर 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, ये स्वरूप है ना। तो उस स्वरूप को कहें हम लोग ज्ञान में है तो लक्ष्य भी, लक्ष्य क्या मिला हमें, यही था ना 16 कला संपूर्ण से क्या बनना है, भाई लक्ष्मी नारायण बनना है। बाबा ब्रह्मा बाबा अपने राइट साइड में श्री कृष्ण की ट्रांसलेट, कल मैं ये बनूंगा कल मैं ये बनूंगा। बाबा 93 के थे, बाबा हम लोग के साथ जमीन पर बैठते थे तो एक दो बार हमने बाबा को उठाने के लिए ना ऐसे हाथ दिया तो मेरे को बुढ़ा देखती हो। मैंने कहा नहीं आप तो बुढ़े का है, आप तो बालक है, हमने बात को बना दिया। तो बाबा के चेहरे पर ओल्ड एज का एक भी चिन्ह नहीं था, क्योंकि उनकी जो बाबा की स्मृति ना, कल मैं ये बनूंगा, बाबा का मुस्कुराना उठना बैठना इतनी दिव्यता थी। तो बाप समान बनना है ना, तो थोड़ा सा जो भी हम कर रहे हैं एक तो थोड़ा संतुलन बनाना पड़ता है। दादी प्रकाशवाणी ने शांति वन में हर घंटे गीत चले। पहले 5 टाइम ट्रैफिक कंट्रोल था, अभी 11-12 घंटे होते हर घंटे। तो उससे भी बहुत थोड़ा रुको, थोड़ा सोचो, फिर आगे बढ़ो। मन को भी स्टॉप करो, थोड़ा एक्शन को भी करो, थोड़ा बोल को भी करो। इसलिए मैं सबसे पूछती हूँ कि जब रेड सिग्नल आता है गाड़ी चलाते हैं तो कौन खुश होता है? पहले येलो होती है फिर रेड होती है। प्लीज स्लो डाउन, रेड मतलब स्टॉप। उसी से ही तो ये ट्रैफिक कंट्रोल का बना है ना। तो अच्छा है स्लो डाउन, क्योंकि आप बहुत तेज चल रहे हैं, मुझे पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है, ये करना है। पॉज फिर उसके बाद स्टॉप। तो हमारा ट्रैफिक कंट्रोल भी किस लिए है? जो संकल्प की गति चल रही है थोड़ा स्लो करो, फिर उसको स्टॉप करो और फिर स्टार्ट करो। एक नई दिशा मिलेगी, नया उमंग होगा जो अच्छी तरह ट्रैफिक कंट्रोल। ये भी एक स्मृति का साधन है। तो इसलिए ये एक यात्रा है रूहानी, और बनना ही चाहिए जब इतने वर्ष से पुरुषार्थ कर रहे हैं। कल मेरे पास एक फैमिली आई, 43 इयर्स से ज्ञान में है। आप में से कोई 50 साल होंगे, हम लोग 60 साल से भी ऊपर हो गए। स्टूडेंट है, पास विथ ऑनर होना है। बच्चे हैं तो सपूत हैं और सबूत हैं। सपूत वही है जो सबूत होना है, एक एग्जाम्पल हो। बाबा कहता था मैं ट्रेवल करता हूँ तो मुझे बेस्ट सैंपल चाहिए। तो हम एक आदर्श उदाहरण मूर्त बने, हमारे जीवन का आदर्श और हमारे जीवन का उद्देश्य वो स्वरूप में दिखाई दे। तो ये सारे विघ्न अंदर के बाहर के समाप्त हो के हमारा यज्ञ निर्विघ्न हो। हमारी स्थिति निर्विघ्न हो, ऐसी हम सभी शुभ भावनाएं रखते हुए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। ओम शांति। हो सकता है आप लोग के मन में कई प्रश्न हो, पर समय की भी बात है और बहुत बड़ी सभा है।